ओम शांति। माया के अनेक रूप सीरीज में आज है बहानेबाजी पे। आज हम सब मिलके चर्चा करेंगे। आज 16वां दिन है, 16 एपिसोड। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे जो मैं कला दिया हूँ, जो ज्ञान दिया हूँ, गुण दिया हूँ, उस ज्ञान और गुण और कला से आपको विश्व की बादशाही जीतनी है। लेकिन हम बच्चे उस विश्व की बादशाही जीतने के लिए, विश्व की बादशाही लेने के लिए चलते तो हैं, लेकिन बीच बीच में हम बहुत चालबाजी कर लेते हैं, बहुत बहानेबाजी करते हैं, बहुत चुगलीबाजी करते हैं, बहुत धोखेबाजी करते हैं। और हमें करनी है विश्व की बादशाही प्राप्त करने की बाजी लेनी है। तो किसी ने कहा था और हमने सुना था, वो दो लाइन आपको पहले सुनाता हूँ। हमें दिल में धड़कने आई भगवान को जीवन में आने से, हमें दिल में धड़कने आई भगवान के जीवन में आने से, मंजिल दूर हो जाएगी बार बार बहाना बनाने से। तो अगर हमें मंजिल को प्राप्त करना है, बहाना को छोड़ना होगा। पहले हम निराश थे, हम ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, भटक रहे थे, यहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे, कहां कहां भगवान को ढूंढ रहे थे। भगवान हमें मिली, भगवान हमें मिला, भगवान हमें मिला, हमारे जीवन में बहार आ गई, खुशियाँ छा गई। लेकिन भगवान जो हमें कार्य देते हैं, भगवान जो हमें सेवा देते हैं, भगवान जो हमें जिम्मेवारी देते हैं, उस जिम्मेवारी को पूरा करने के बजाय हम कई सारी बहाने ढूंढ लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे सभी जने मिलके कि हम कहाँ कहाँ बहाना बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। बहाना अर्थात कोई भी बात में आनाकानी करना। अच्छा, ये करने से क्या होगा, क्यों करना चाहिए, जरूरी है क्या, किसने बोला, माना ये करके किसी को कुछ मिला है क्या, माना ऐसे ही टाल मटोल करना। हाँ नहीं, अभी हाँ करेंगे, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है कर लेंगे, क्या हट जाएगा, कोई भागे जा रहेगा, कोई भी बात को पोस्टपोन करते जाना। हाँ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर तो रहा हूँ ना, कर रहा हूँ ना, अब इतना क्यों पीछे, क्यों पड़े हो मेरे पीछे, अभी अभी कर रहा हूँ। ये सब क्या है, ये सब बहानेबाजी है। बहानेबाजी क्यों करते हैं व्यक्ति। अगर व्यक्ति के अंदर में अगर आलस है तो ढेर सारी बहाना ढूंढता रहता है, बहुत सारे बहाने ढूंढते, बहुत सारी बातें उलझाते रहते हैं। आप सबने सुना होगा कि एक स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, स्टेशन से लोग उतरता है, और स्टेशन से लोग उतरते ही जो चाय वाला होता है, नाश्ता वाला होता है, फल वाला होता है, सभी भाग भाग के आता है, ये लो ऐसे ऐसे आप बोलते रहते हैं। और लोग भी लेने, जिनको जरूरत हो तो वो लेता रहता है। एक उसमें सेब बेचने वाली जो माता होती है वो नींद करती रहती है, और उनके सेब के ऊपर और उनके मुंह के ऊपर मक्खी लगता रहता है। एक भाई बोलते, माता जी ये सेब क्या रेट है, वो सुनती नहीं है। दूसरी बार बोलती, माता जी सेब क्या रेट है, तू भी नहीं सुनती। तीसरी बार बोलती, क्या बोला, माता जी सेब क्या रेट है, इतने लोग बेच रहे सामान, आप नींद कर रहे हो, बताओ आपको बेचना है कमाना है तो थोड़ा तो जागृति लानी चाहिए ना। तो बोले उससे क्या होगा, जागृति लाने से कमाई होगी, तो कमाई से क्या होगा, तो आपको इनकम ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, अच्छे घर ले सकते हैं, अच्छे फैसिलिटीज में रह सकते हैं, तो उससे क्या होगा, सुख चैन से रह सकेंगे। तो बोले इतना करने के बाद सुख चैन लेने से अच्छा कि अभी मैं सुख चैन में हूं, ये क्या है, ये आलसी तो है। व्यक्ति बहाना बनाता है आलस के कारण से। व्यक्ति के जीवन में अगर अलबेलापन है, अलर्टनेस नहीं है, तब वो व्यक्ति बहाना बनाता है। शरीर में सुस्ती है, मन में सुस्ती है, कुछ करने का जी नहीं करता है, काम पड़ा है, मन करने का मन ही नहीं हो रहा है, क्या करेगा, बहाना ही तो बनेगा और क्या करेगा। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में अपना दिनचर्या फिक्स करके रखते हैं, इतने बजे ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, सब कुछ सेट रहता है, शेड्यूल अपसेट ना हो इसीलिए अपना बहाना बना देते कई बार। अगर ड्यूटी के टाइम में कोई बोले चलने के लिए, अब बोल रहे भाई मेरा ड्यूटी, फिर भी नहीं मान रहे, तो कुछ तो बहाना दूसरा बनाएगा, भाई मेरा पैर में दर्द है, मेरा पेट में दर्द है, मेरा कुछ हो रहा है, कई बार ऐसे भी करता है। व्यक्ति जब तनाव में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, मनोकायिक रोग से ग्रसित रहता है व्यक्ति, तो भी कुछ करने के लिए कहो तो कुछ ना कुछ बताता रहता है। कई बार आर्थिक अभाव के कारण से अगर भाई बहनी बाबा के बच्चे के पास उतना नहीं रहता है, और यज्ञ में करना जरूरी रहता है सेंटर वगैरह पे, फिर क्या करते, बहन जी बोलती करो करो, उनके पास नहीं है, बोल भी नहीं सकते कि बहन जी मेरे पास नहीं, तो कुछ टालता रहेगा बात को। उस कारण से भी कई बार अगर व्यक्ति उनके शरीर में बीमारी है, तकलीफ है, तबीयत खराब है, और तबीयत खराब बताना नहीं चाहते, तो फिर भी बहाना बनाता है व्यक्ति। ऐसा बहुत कारण है जिस कारण से हम बहाना बनाते हैं। अगर संबंध खराब है, अगर किसी को बोलो उनको हेल्प करो और उनके साथ संबंध खराब है, बोल भी नहीं सकते हम, बाबा के बच्चे कैसे बोले उनके साथ संबंध खराब है, तो कुछ तो भाई टाइम नहीं है, अच्छा मुझे वहाँ जाना है, उनको वो टाइम दिया है, वो काम करना जरूरी है, कुछ ना कुछ बहाना बनेगा। अगर संबंध खराब है किसी के साथ तो भी बहाना बनाता है। अगर लक्ष्य सामने दिखाई नहीं देता है, लक्ष्य के प्रति व्यक्ति सजग नहीं रहता है, पता नहीं जीवन में क्या करना है, क्या करना, आज करना क्या है वही पता नहीं है, जरूरी क्या है और बाद में क्या करना है वही पता नहीं, इसीलिए भी व्यक्ति कई बार बहाना बनाता है। ब्राह्मण बहाना बनाते हैं कहाँ कहाँ पे, मुरली सुनने में। जिन मुरली को सुनने के लिए, जिन मुरली के लिए हमारी दादियां कितना सहन किया, कितना उनको सुनना पड़ा, कितना सहन करना पड़ा, कई रोज भूखे रहना पड़ा, उस मुरली सुनने के लिए बोलते टाइम नहीं है। हाँ अभी तो यूट्यूब में आता है ना, व्हाट्सएप में आता है, उसमें सुन लेते हैं। भगवान परम धाम छोड़ के हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं और हम बोलते हैं हमारे लिए टाइम नहीं है। भक्त लोगों को भगवान की भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए कितना उनको शीतम सहन करना पड़ा, कितना उनको कठोर से कठोर तपस्या करनी पड़ी। आज अभी बाबा फ्री में, मुफ्त में हम बच्चों को लुटा रहे, ज्ञान का खजाना दे रहे हैं, हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं, हम तो यूट्यूब में सुन लेते हैं, हम तो घर में पढ़ लेते हैं, हम घर में बैठे बैठे सुन लेते हैं, मधुबन का डायरेक्ट मुरली सुनते हैं, ऐसे बोलते हैं। बाबा ने श्रीमत दिया है, बाबा ने हम बच्चों को बताया है मुरली सुनना है सेंटर पर जाके, पूरा विधि पूर्वक सुनना है, जैसे कि हमें स्वयं भगवान सुना रहे हैं, हम तड़प रहे उस मुरली के लिए, उस भावना से हमें सुनना चाहिए। वर्तमान समय कुछ दिनों से हमें डायरेक्शंस मिला है कि अभी इस दूरी बना के, इस घर पे रह के मुरली सुनना है। ऐसे समय में भी जिस समय मुरली चलते हैं उसी विधि से कि हम सेंटर पे मुरली सुन रहे हैं, फलाने जगह पे मुरली सुन रहे, जहां से हमारी कनेक्शन है वहां से सुन रहे, उसी विधि से अपने घर में एक स्थान फिक्स करके उस स्थान पे सुनना चाहिए। अगर कोई कारण है, कोई परिस्थिति है, कोई बातें है, तो वो भी अपनी निमित्त आत्माओं से टाइम निकाल के, उन निमित्त आत्माओं से सलाह लेके किस तरीके से चलना है, किस हिसाब से चलना है, किस विधि से चलना है, वो विधि को अपना के उस हिसाब से चलना है। ऐसे नहीं अभी नहीं, बाद में नहीं, दोपहर में नहीं, समय किसी टाइम पर लेंगे, नहीं। हमको याद है एक भाई मधु बनाया था बहुत साल पहले, और उनसे पूछा गया कि भाई आप क्या पुरुषार्थ करते हो, कैसे करते हो, कब मुरली सुनते हैं? तो बोला कि हम बहुत बिजी रहते हैं, हम किसी टाइम मुरली सुन लेते हैं। तो वो भाई को किसी बहन ने बताया कि भक्ति मार्ग में तो भक्त तो भगवान को बगैर पूजा किए हुए भगवान को भोग लगे पानी भी नहीं पीता, लेकिन तुम किसी टाइम मुरली सुन रहे हो, कैसा बाबा का बच्चा हो तुम। तब से लेके सुना हमने, तब से लेके वो भाई अब तक जब तक मुरली नहीं पड़ता है तब तक कुछ भी नहीं खाता है। तो ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए, ऐसा हमारे अंदर में दृढ़ता होनी चाहिए कि जब तक हम मुरली में हमारे हमारे अंदर से कोई भी बहानेबाजी की संकल्प नहीं आनी चाहिए। योग करने के लिए ब्राह्मण बहाना बनाता है, योग के समय में ही काम निकालते रहते हैं। हाँ, किसी की सेवा होती, किसी की जरूरत होता है, उनकी बात अलग है, लेकिन जिनको टाइम है अगर बाद में भी दूसरा काम कर सकते हैं तो हमें दूसरा काम बाद में करके योग के समय में योग करना चाहिए। तभी हमें बाबा की मदद मिलेगी, तभी हमें बाबा सहयोग देंगे, तभी हमें कुछ अनुभव होगा। सेवा के लिए कई बार सेवा की जरूरत होती है और सेवा के लिए बहाने बना देते हैं कि हम बिजी हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, किसी आप दूसरों को बता दो। दधीची ऋषि के लिए बताते हैं, दधीची ऋषि ने देवताओं को सत्य मार्ग पर चलने वाले को लिए क्या किया, अपना हड्डी सेवा में लगाया। कुछ दिन पहले दधीची ऋषि के बारे में हमने सुना था कि अपनी हड्डी सेवा में लगाया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया देवताओं को बचाने के लिए। वैसे हमें भी ब्राह्मण जीवन में हमारे बाबा, हमारी मम्मा, हमारी दादियाँ, हमारी दीदियाँ श्वासों श्वास हड्डी संकल्पों संकल्प सेवा में लगा रहे हैं, हमें भी सेवा में सफल करना है। जहाँ जरूरत है, जो बाबा ने हमें जिम्मेवारी दिया है, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, वर्तमान समय संगम युग है, कलयुग का भी प्रभाव है और सत्ययुग का भी प्रभाव है। ऐसे समय में शरीर भी अपना नाज रखने नखरे और खेल करता रहता है। ऐसे समय पे हमारे डॉक्टर्स चाहे हमारे जो स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले बोलते हैं कुछ परहेज करो, आपको ये तकलीफ है, परहेज करने में बहाने हैं, हमको मिलता नहीं, हमको जो मिलता वही खाना पड़ता है, हमें ये है, हमें वो है, कई सारी बातें बताते रहते, बहाना ढूंढते रहते, बाबा ने ही दिया है ऐसे बोलते रहते, और बाबा के ही डायरेक्शन से ही बच्चे शरीर का ध्यान रखना है, ये भी सच है। तो जब हमें परहेज करना है, जब हमें संभालना है, तो हमें परहेज करना है। परहेज करने में भी ब्राह्मण बहुत सारे बहाने को सामने ले आते हैं, कई सारी आदतें जो हमें सुधारना चाहिए, जो हमारे अंदर है, जो हमारे पुरुषार्थ में, जो हमारे सेवा में, हमारे संगठन में जहाँ हम रहते हैं उस स्थान के लिए विघ्न बन जाता है। हमें मार्गदर्शन भी मिलता है, शिक्षा सावधानी भी मिलती है, फिर भी हम वो नहीं सुधार पाते, चाहे वो सुधारने की तरफ अपनी ध्यान नहीं देते हैं और ही कुछ नई नई बातें बता देते हैं। तो हमें देवता बनना है, दैवी गुण धारण करना है, पुरानी दुनिया से मरना है, तो पुरानी आदत को भी मारना होगा, बदलना होगा। कोई भी काम, कोई भी सेवा, कोई भी बात बहुत जरूरी होती है जो अभी अभी करनी होती है, उसको भी हम पोस्टपोन कर देते हैं, उसमें भी कुछ बहाना ढूंढ लेते हैं, कुछ बातें निकाल देते हैं, अपने आप को दूसरी कारोबार में, दूसरी सेवा में बिजी कर देते हैं। जैसे किसी को जाना है और उनको कुछ सामान देना बहुत जरूरी है, और हमको वॉकिंग जाना है, हम बोलते भाई मैं तो थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ, अब मैं बाद में भेज दूंगा आपको, चिंता नहीं करो, आप भले जाओ, अभी जाना है। ब्राह्मण ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा अब गुण की ही गुणगान करने वाली हो गई है, उसमें हम भी आ जाते हैं। हम देवता बनने वाले देवी कुल की आत्माएं हैं, हमारे अंदर बाहर दोनों साफ होना चाहिए। जिस स्थान पर हम रहते, जिस घर में हम रहते हैं, वहां पे जो सफाई होनी चाहिए, जो रूम की सेटिंग होनी चाहिए, जो सामान की सेटिंग होनी चाहिए देवता जैसे सिस्टमेटिक, वो नहीं कर पाते, बिखरा हुआ रहता है हमारा सामान। वो काम 2 मिनट का होता है, लेकिन हाँ चलो अभी नहीं बाद में करते हैं, अभी नहीं बाद में करते, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, ऐसे कुछ न कुछ करते करते करते, मतलब वो ऐसे ही कई दिनों तक पड़ा रहता है वो सामान। तो हमें रूम की सफाई, रूम की सेटिंग करने में, अपनी सामान को सेट करने के लिए भी में बहाना बनाते, अलबेलापन, आलस, सुस्ती ले आते हैं। तो हमें आज एक संकल्प करना है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा, कि बिखरा हुआ सामान को हमें सेट करना है। आज का संकल्प लेंगे, फिर अमन बहाने बनाते हैं, जो बाबा होमवर्क देते हैं और बाबा बच्चों से होमवर्क करने के लिए हाथ भी उठवाते हैं और एकदम जोर से एकदम सीधा हाथ उठा लेते हैं ब्राह्मण की, बाबा हम करके दिखाएंगे, लेकिन बच्चे नहीं करते हैं। बाबा के होमवर्क करने के लिए भी ब्राह्मण बहाने बना देते हैं, कुछ न कुछ बाबा ये बातें आ गई, फुर्सत नहीं मिला, ये हो गया, करना तो चाह, पुरुषार्थ तो किया लेकिन नहीं हो पाया, हमारा इतना पुरुषार्थ नहीं है, हमारा सत्युग में इतना ऊंचा पद नहीं है, कुछ न कुछ बाबा को भी बताते रहते हैं, बाबा को भी समझा देते हैं। धारणा के लिए या अर्थात श्रीमत पर चढ़ने के लिए भी ब्राह्मण अच्छी खासी बहाना बना देते हैं, व्यर्थ से, पर चिंतन, पर दर्शन से, जो हमें नुकसान पहुंचाता है उनसे भी, उस प्रचिंतन प्रदर्शन व्यर्थ में हम अपनी टाइम बर्बाद करते रहते हैं, गवाते रहते हैं। और हमें कहा भी जाता है कि भाई ये प्रचिंतन पतन का जड़ है, व्यर्थ कभी आपको समर्थ नहीं बनने देगा, आप इनमें नहीं जाओ, इनसे कुछ प्राप्ति नहीं, आज तक जो गया है उनको फायदा के बदले नुकसान ही हुआ है, हमको पता भी, हम समझ भी रहे, फिर भी हम करते रहते हैं। कहते दूसरे भी तो करते हैं, उन्होंने भी तो, कि वो तो मेरे से बड़ा है, वो तो हमारे से पुराने हैं, वो तो ऐसा है तो वैसा है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए भी योगी बहाने बनाते हैं, कौन पुरुषार्थ करके ऊपर चला गया दिखाओ मेरे को, सब तो ऐसे ही है, बाबा तो कब से बोल रहे विनाश हो जाएगा, होता तो कुछ भी नहीं, कोरोना आया था वो भी धीरे धीरे शांत हो गया। तो ब्राह्मण बहुत सारे अपनी बहाना ढूंढते रहते हैं, नई नई युक्ति निकालते रहते हैं अपने आप को छिपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए बहानों में नवीनता लाते रहते। ऐसे तो बहुत सारा निकल सकती है, लेकिन इतना निकाला है। और बहाने से नुकसान क्या होता है वो हम देखेंगे, अभी फायदे लास्ट में है। बहाने से नुकसान होता है, हमारे संबंध आपस में बिगड़ जाते हैं, संबंध बने नहीं रहते हैं। अगर हम बार बार बहाना बनाते, कोई काम दिया जाता है हमको, अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे संबंध ठीक नहीं रहता है। जो जिनके साथ हम रह रहे हैं, जैसे जो हमारे साथ रह रहे हैं वो कहेगा ये तो ऐसा ही है, कुछ भी बोलो तो टालता ही रहता है, हमारे संबंध नहीं रहते, आपसी दिल की भावना आपस में नहीं जुड़ती, मिल के करते हैं काम, चलते हैं साथ में, रहते हैं साथ में, भोजन करते हैं साथ में, सोते हैं साथ में, लेकिन भावनाएं बहुत दूर रहते हैं हमारा। हमारे जो बड़े हैं उनके हम फेथफुल नहीं रह सकते, उनके हम विश्वास पात्र नहीं रह सकते, उनके वो बड़े हमारे ऊपर विश्वास रख के नहीं चलेंगे, कहेंगे कुछ भी करो गड़बड़ जरूर करेगा ये, इसलिए इन पर विश्वास रखना ठीक नहीं है। बड़े बड़ों के दिल पे हम नहीं बैठ सकते, बड़ों की विश्वास नहीं, जैसे उनका आशा पूरा नहीं कर सकते हम। उससे बड़ी बात है कि बाबा के विश्वास पात्र नहीं बन सकते। भगवान ने ये इतना श्रेष्ठ जीवन दिया है, भगवान जी उतनी ऊंची नजर से हमें देखते हैं, भगवान जो हमें जितना ऊंचा बनाना चाहता है उनके विश्वास पात्र नहीं बन सकते हैं। बाबा के और बड़ों का ब्लेसिंग्स नहीं मिल सकता है, बाबा की मदद नहीं मिलेगी, बड़ों की दुआएं नहीं मिलेगी हमारे जीवन में। लास्ट बस्ते से प्यार करते, लेकिन प्यार आप प्यार हमें प्राप्त नहीं होगा। प्यार तो करते हैं हम, बताते तो हम ही तो बताते साधन के कोर्स में कि सूर्य की रोशनी और पेपर कितना भी दिन रहे नहीं जलेगा, बीच में लेंस डालना पड़ेगा। लेंस अगर डालेंगे तो जलेगा। अगर विश्वास पात्र बनना है तो बहानेबाजी को छोड़ना पड़ेगा, विश्वास दिल को जीतना पड़ेगा, सच्चाई की लेंस लगानी पड़ेगी। जिम्मेवारी से हम वंचित हो जाएंगे, जिम्मेवारी मुक्त, समस्याएं युक्त हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन से जिम्मेवारी से मुक्त होना सबसे बड़ी दुख की बात है। जिम्मेवारी मुक्त समस्या युक्त बन जाएंगे तो बनना क्या है वो आप देख सकते हैं। अगर जिम्मेवारी लेते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, संगम युग में ब्राह्मण जीवन में बिजी रहेंगे तो जीवन इजी रहेगी, प्राप्ति से भरपूर रहेंगे, भाग्य कम हो जाएगा हमारा। जिस लक्ष्य से हम आए थे, जिस भाग्य बनाने के लिए यहाँ पे आए थे, वो भाग्य हमारा नहीं बन पाएगा। हमारी टाइम भी जाएगी, एनर्जी भी जाएगा, मनी भी जाएगी, सब कुछ देंगे लेकिन प्राप्ति कम हो जाएगा, भाग्य कम हो जाएगी। गंतव्य पर समय पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको बोला जाए कि आपका ट्रेन आबू रोड से 10 बजे है और आप बहाने बना दो और 10 बजे यहां से निकलो तो क्या होगा? गंतव्य पे समय पे अपनी स्थान पे नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरा क्या, अगर इंट्रांस का टाइम अगर छूट गया तो, किसी का अगर एग्जाम का टाइम है, किसी का अगर इमरजेंसी है तो क्या कर? ऐसा नहीं है, अगर लेट से खुलेगी तो ट्रेन को हर स्टेशन पे लेट छोड़ता है, नहीं होता है। गंतव्य पे हम नहीं पहुंच पाएंगे अगर बहाना बनाएंगे तो। लक्ष्य की प्राप्ति, छोटी लक्ष्य और बड़ी लक्ष्य दोनों की प्राप्ति हमारे से दूर हो जाएगा, गंदगी फैलाने के निमित्त आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि हम बहाना बनाएंगे, रूम की सफाई नहीं करेगा तो क्या होगा? हमारी चाट खराब हो जाएगा, हम बाबा को चाट ठीक से नहीं दे सकेंगे। जो चाट को देख के बाबा खुश हो जाएं, वो चाट हम ठीक चाट बाबा को नहीं दे सकेंगे, चाट खराब रहेगा हमारा। यज्ञ की डिसर्विस होगी, कहेगा कि अगर कोई अज्ञानी लोग अगर देखता है ये बहाना बनाता है तो कहेगा ये संस्था में इस ओम शांति वाले लोग सब ऐसे ही होते क्या? कोई भी बात में बात को होता कुछ, करता कुछ, चलता कुछ, ही हो क्या रहा है? ये सब बोलते ओम शांति, पूरा सफेद कपड़ा पहनता है, ऐसे ऐसी बातें सुनाता है, तो यज्ञ की भी डिसर्विस हो सकती है। तो ये सब नुकसान हो सकता है अगर हम बहानेबाजी की बाजी जीतने की तैयारी करते हैं, चाहे लगे रहते हैं बहानेबाजी करने में। तो अगर बहानेबाजी करना भी है ब्राह्मण जीवन में, वो भी थोड़ा सा पॉइंट निकाला है करने के लिए, बहानेबाजी करना भी चाहिए ब्राह्मण को, उससे उनके फायदे। हमें बहानेबाजी करना है, बहाना बनाना है, योग के समय है, सेवा का समय है, पुरुषार्थ का समय है, कोई जरूरी काम करे और कोई मेरा ऐसा फ्रेंड आगे बोलता है चलो घूमने के लिए, कितना भी बोल रहा हूँ भाई मैं बिजी हूँ, नहीं मान रहे वो, अब क्या करें? वहाँ तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ, कुछ बोलना पड़ेगा वहाँ पे। तो फालतू के घूमने फिरने के लिए अगर समय बर्बाद जहाँ हो रहा है हमारा, ऐसे समय में अपने को थोड़ा सा, दूसरी बात ये तो ब्राह्मण करते ही रहते हैं खान पान के लिए, कहीं जाते हैं, रिलेटिव है, कुछ है, अब उनको क्या बोले, समझता ही नहीं, बोलता भाई मैं ये नहीं खाता, समझो ना मुझे नुकसान करता है। एक भाई था, वो भाई बहुत दूर रहता था, वो ज्ञान अपना जो बीके के कनेक्शन से बहुत दूर था वो, अब भाई ज्ञान में चलता था, खान पान शुद्धि हो गया था, अब इतने अनजान लोग थे, मतलब ज्ञान से अनजान लोग, कि वो बोलते थे भाई तुम प्याज नहीं खाते हो, तुम लहसुन नहीं खाते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम नहीं वो करते हो, आखिर तेरे को हुआ क्या है, क्यों, कौन बोला है नहीं खाने की, इसमें तो ये फायदा है ये फायदा, बहुत सारी बातें। वो भाई बोला मुझे बहुत बड़ी बीमारी थी, डॉक्टर ने मना किया है। बोला कौन सा डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर, क्या बीमारी थी, दिमाग खराब हो गया था, एक डॉक्टर बोला ये नहीं खाओ तो ठीक होगा, और ये जब से परहेज किया ठीक हो गया। तो गलत खान पान के लिए भी कई बार बहाने बनाने पड़ते हैं ब्राह्मण को, पुराने संस्कार को समझाने के लिए अपने आप को ही कुछ ना कुछ बहाना देना पड़ता है, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो वो संस्कार थोड़ा रुक जाता है और दूसरी संस्कार हमारे अंदर आता है, जिस कारण हम उस गलत करने से, उस संस्कार को फिर से दोहराने से हम बच जाते हैं। श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए कुछ युक्ति अपनानी पड़ती है, उसमें कई सारी बातें, जहां आप है तो बीच में इससे पहले भी थोड़ा चर्चा हुआ था कि हम पुरुषार्थ के लगे सेवा में अच्छा काम कर रहे हैं और हमें डिस्टर्ब करने के लिए आ रहा है, जो काम बाद में भी हो सकते हैं तो उसको बोल सकते हैं कि भाई अभी नहीं बाद में करो, हम कुछ बिजी है, कुछ है, ऐसे बता सकते हैं। और किस लिए बहाने बनाने हैं हमें, विश्व की बादशाह जीतने के लिए बहाने बनाने। परचिंतन प्रदर्शन व्यर्थ से मुक्त होने के लिए हमें बहाने बनाने हैं, अपने टाइम को श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ पुरुषार्थ, श्रेष्ठ सेवा के लिए बहाने बनाने हैं, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहाने बनाने हैं, भगवान के श्रेष्ठ कार्य के में सहयोगी बनने के लिए हमें बहाने बनाने हैं। बहाने बनाने से हमें क्या फायदा होता है, लक्ष्य की प्राप्ति होगी, गंतव्य पे हम समय पे पहुंचेंगे, समय की बचत होगी, भगवान के और निमित्त आत्माओं के फेथफुल होंगे, हमारे जीवन में अलर्टनेस और एक्यूरेसी आएगी, हम दूसरे का मार्गदर्शक बन जाएंगे, बाबा का और बड़ों की दुआएं हमारे साथ होगी। अच्छा, ओम शांति।